संतुष्टता की चैतन्य दर्शनीय मूरत आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। यूं तो दीदी का लौकिक जन्म पंजाब की धरनी पर हुआ है, लेकिन अलौकिक जन्म महाराष्ट्र की महान धरनी पर हुआ है। और विशेष करके आपने मम्मा और दादी जानकी से ब्राह्मण जीवन की ट्रेनिंग प्राप्त की है, और आपका सौभाग्य रहा कि दादी ब्रिज इंद्रा के साथ महाराष्ट्र में मुंबई में सायन में उनके संग रहे, उनकी भी पालना मिली। और फिर जब दादी अव्यक्त हो गए तो 1990 से पूरे महाराष्ट्र की कमान आपने संभाली, तो वर्तमान में आप महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और गोवा आदि के जोनल इंचार्ज हैं और पूरे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। मुंबई में सेवाओं का खूब विस्तार किया है। आपकी विशेषता है मेगा प्रोग्राम्स करने की, याद है ना आप सभी को, एक एक लाख के मेगा प्रोग्राम दादी प्रकाशमणि ने करवाए थे। तो आपकी विशेषता है कि मेगा प्रोग्राम को बहुत अच्छी रीति से ऑर्गेनाइज करना। और इसके अलावा मुंबई में रहते मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1993 में पहली बार आपको गार्डन दिया जिसको आपने एडॉप्ट किया और उसको बहुत ही सुंदर रीति से डेवलप किया, और उसके द्वारा न सिर्फ ब्राह्मणों की लेकिन समाज की भी खूब सेवा हुई। और उससे खुश होकर वर्तमान में दीदी के अंडर में 13 गार्डन्स हैं, तो खूब सेवाएं चल रही है उनकी भी। और आपकी शूरवीरता आदि को देखकर, सामाजिक सेवाओं को देखकर, आप हमारा जो सोशल विंग है उसके चेयरपर्सन भी हैं, और इसी सामाजिक कार्यों में जो आपने इतना योगदान दिया है, आपको हैदराबाद के भारतीय संस्कृति निर्माण परिषद द्वारा महारानी झांसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। और पूरे भारत भर में आप भ्रमण करते रहते हैं सेवाओं अर्थ, न सिर्फ भारत में लेकिन यूके, यूएई, यूएसए आदि आदि विदेश की धरनी पर भी जाकर बाबा का झंडा लहराया है। आज हमारे बीच में, चूंकि मम्मा बाबा के समय से है, दीदी मनमोहिनी के समय से है, और दीदी मनमोहिनी का विशेष मंत्र अब घर चलना है। आज की मुरली में भी बाबा ने ये बात याद दिलाई, तो दीदी विशेष इस बात पर प्रकाश डालेंगे, घर चलने की तैयारी कैसे करें और दीदी मनमोहिनी की कुछ विशेषताएं जो हमारे ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ में हमें भी मदद करे। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। जुलाई मास आती दीदी मनमोहिनी की याद जरूर आती, क्योंकि दीदी मनमोहिनी ने जो विशेष घर चलने का पुरुषार्थ किया, और सिर्फ खुद ने किया पर हम सभी को भी कराएं, क्योंकि जाना तो सभी को ही है। हमने देखा दादी दीदी जी में, जब घर चलने का जैसा जैसा समय याद आ रहा, नजदीक आ रहा था, वैसा वैसा दीदी जी को घर ज्यादा ही याद आता था। बाबा कहते हैं ना, तुम्हें जैसा अपने शहर के नजदीक जाते हैं तो वहां की बिल्डिंग्स देख करके, झाड़ पौधे देख करके, स्मृति पावरफुल होती जाती। तो धीरे धीरे दीदी की स्मृति भी पावरफुल होती गई। हम जब भी दीदी से मिलते थे तो हम लोग तो कभी भी मिलेंगे तो ओम शांति कहते हैं, जब विदाई लेंगे तभी भी ओम शांति कहते हैं। तो दीदी कहती थी ये ओम शांति क्यों करते, जब भी मिलते हो तभी ओम शांति कहो और जब जाते हो तभी अब घर जाना है कहो। तो दीदी ने वहां से ये महामंत्र पक्का कर लिया। तो हम लोग जब भी फिर दीदी से विदाई लेते थे तो अब घर जाना है कहते थे। तो उसको खुद की भी खुद भी घर की याद रहती थी और हमें भी घर की याद दिलाती। दीदी के अंदर अनेक विशेषताएं थी, क्योंकि शुरू से लेकर के सिंध हैदराबाद से लेकर के दीदी ने यज्ञ की जो सेवाएं की और दीदी का जो निश्चय था एक बल एक भरोसा, बाबा के साथ जो प्रीति थी, दीदी का लौकिक में नाम गोपी था, सचमुच वो शिव बाबा की गोपी थी। दीदी जब भी हम लोगों को योग बैठ के कराती थी इतनी चढ़ जाती थी योग में जो नीचे उतारना ही मुश्किल हो जाता। और सिर्फ खुद नहीं चढ़ती थी, हमें भी चढ़ा देती थी, घंटों बैठे रहते थे, खास प्रोग्राम बनाते थे उसके लिए। जितना निराकार के साथ उनका प्यार था उतना ही साकार के साथ भी प्यार था। इसीलिए दीदी के अंदर जो विशेषता थी कंट्रोलिंग पावर, बाबा ने उनको यज्ञ का कंट्रोलर बनाया हुआ था। जब तक मम्मा यहां पर थी मधुबन में बाबा के साथ, तब तक दीदी सेवा उनके ऊपर जाती थी। और मम्मा अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी को यहां मधुबन में ही साथ में रख लिया। तो हमारा दीदी के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था, क्योंकि दीदी की जो नेचर थी वो सखीपन की नेचर थी, सबको सखी बनाती थी। दीदी कहती थी सबको सखी बनाओ, सहेली नहीं बनाना। अभी आप बोलेंगे वो तो दोनों एक ही शब्द हैं, अलग क्या हुए। सहेली का मतलब होता है जो फालतू बातें करते आपस में, वो सहेली। हम पूछते थे दीदी ये क्या होता है, एक ही बात हुई ना, तो बोलती थी नहीं, जो फालतू बातें इधर की उधर की तेरी मेरी इधर उधर की बातें करेंगे वो हो गई सहेली, और सखी जो है वो हमेशा आत्मोन्नति की बातें करेगी। कृष्ण श्री कृष्ण के साथ सखा और सखी बताते, सहेलियां नहीं बताते कभी। तो हर एक बात में दीदी के ज्ञान भरा हुआ होता था। पहले दीदी की विशेषताएं बताती हूँ, उसके बाद घर चलेंगे, इतना जल्दी नहीं घर जाना है अपने को। तो हमने देखा दीदी जितना योग के लिए सीरियस थी, जितना दीदी को योग में इंटरेस्ट था उतना ही दीदी को पढ़ाई में भी अति इंटरेस्ट। वो शिव बाबा के मुरली की दीवानी थी। गोपी को बताते हैं ना मुरली की दीवानी, तो शिव बाबा के मुरली की दीवानी थी। इसीलिए उस समय तो सिर्फ नीचे हिस्ट्री हाल था, तो बैठ करके जब मुरली सुनते थे, उसके बाद भी जब बाबा अव्यक्त हो गए और दादी मुरली सुनाती थी। हमने शुरू से दीदी को जब से देखा, दीदी के हाथ में पैड और पेंसिल जरूर होती। गॉडली स्टूडेंट, पंचुअल, एक्यूरेट, एकदम स्ट्रिक्ट, जैसा मिलिट्री लेडी थी। पढ़ाई का बहुत शौक, इसीलिए हमेशा दीदी मुरली के ऊपर बहुत अटेंशन देती थी। दादी मुरली सुनाती थी, दीदी बैठ के पॉइंट्स लिखती थी, हम भी लिखते थे। परंतु दीदी इतने अच्छे प्रश्न निकालती थी उस मुरली में से। मुरली पूरी होती थी तो हम लोगों को बुलाती थी, टीचर्स को बोलती इधर, फिर ऐसा बैठती थी वहां, तभी तो ओम शांति भवन भी बन गया। फिर बैठ करके कहती थी चलो अभी ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे। तो दीदी हम लोगों से प्रश्न पूछती थी। मैं समझती हम बहुत कम थे जो पास होते थे, क्योंकि उसके प्रश्न ही अलग होते थे और बहुत गुह्यता, ज्ञान की गुह्यता में जाने वाली। दीदी को खुद के जीवन से बहुत प्यार था और खुद के जीवन से बहुत प्यार होने के कारण पढ़ाई और योग के ऊपर उसका खास अटेंशन था। सिर्फ खुद से प्यार था ऐसा नहीं, सारे ब्राह्मण परिवार से भी प्यार था। दीदी ने जब ये कारोबार संभालती थी दीदी, तो पोस्ट कार्ड के पीछे बाबा की मुरली के महावाक्य लिखाती थी, प्रिंट कराती। पहले हाथ से निकलते थे, बाद में प्रिंट होते। थोड़ा लिखेगी, पत्र लिखेगी, किसी का भी पत्र आएगा उसको जवाब देगी, परंतु उसके साथ ज्ञान भी जरूर देती। तो उनका विशेष इस बात की तरफ ध्यान रहता था। और ड्रामा इतना वंडरफुल है, क्या है क्योंकि सारा समय दीदी बाबा के पास रहती थी, साकार बाबा के पास। परंतु जिस समय, जिस दिन बाबा अव्यक्त बने, उस दिन दीदी दिल्ली में थी, सेवा के लिए गई हुई। और प्रकाशमणि दादी जो बॉम्बे में रहती थी वो बाबा के पास थी। प्रकाशमणि दादी तो जा रही थी पार्टी लेके वापस, बाबा से रिफ्रेश होने के लिए आए थे। और कार में सामान भी चढ़ गया था, तो बाबा से छुट्टी लेने के लिए गई। बाबा को कहा बाबा मैं जा रही हूँ। बाबा ने कहा कहाँ जा रही? बोला बाबा जहाँ आई वहां जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ सेवा पर। बाबा ने कहा नहीं, थोड़ा दिन ठहर जा। बाबा ऐसा आर्डर निकालता था, किसी को काम भी भेज देगा कभी। तो दादी को ठहरा लिया और दीदी जो यहां रहती थी वो दिल्ली चली गई। उसके बाद दीदी को जब मालूम पड़ा तभी, और बाबा ने फिर दीदी और दादी ये दो हंसों को मुकरर किया, सारा कार्य व्यवहार संभाला। उस समय पर हमने देखा कि दादी और दीदी की जोड़ी कितनी अनोखी थी। ये ऐसी जोड़ी थी, एक कहे दूसरा माने, कहा जाता है एक कहे दूसरा माने उसका भगवान भी टाल नहीं सकता। हम हमेशा हंसते थे, कहते थे, हम कहते थे इनके तन दो है, बाकी ये आत्मा तो दोनों एक ही, दोनों के विचार एक, संस्कार एक, सब एक जैसा। तो इतना गहरा आपस में कनेक्शन था दादी और दीदी का। दीदी के कनेक्शन में आने में मुझे उस समय पर काफी समय मिला, जिस समय पर ये ओम शांति भवन बना। क्योंकि ओम शांति भवन बना तो हमारी दादी को तो यही था कि ज्यादा से ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जावे। दादी का ये सिद्धांत था, जो भी चीज हम बनाते हैं सेवा के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करेंगे तो ही पैसा वसूल होता है, नहीं तो नहीं होता। तो कंटिन्यू कोई ना कोई प्रोग्राम चलते थे। उस समय बहुत हैंड्स कम थे हम लोगों के पास, आप लोगों में जो थे वो हाथ ऊपर करें। दीदी के समय बहुत कम थे, देखो 3-4। तो इतने हैंड्स कम थे और प्रोग्राम रखते थे, फिर प्रोग्राम रखे गए तो कारोबार संभालने वाला तो कोई होता नहीं था, थोड़े जो यहाँ रहते थे वो ही होते थे। इसीलिए हम हमेशा हर प्रोग्राम में हमको श्री भोलेगा नाथ का भंडारा बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा सबको भोजन, ब्रह्मा भोजन खिलाने की ड्यूटी उठाते थे। तो आकर के ब्रिजेंद्रा दादी तो थी उस समय, मैं ब्रिजेंद्रा दादी के पास बॉम्बे में रहती थी। पहले मेरे को बाबा ने पूना में भेजा था जानकी दादी के पास, फिर बाबा ने मुझे ब्रिजेंद्रा दादी के पास रखा। उस समय सरला दीदी, हम, कमला बहन हांगकांग वाली और सुंदरी बहन, हम चार जानकी दादी के पास रहते। वो दिन भी बड़े प्यारे थे। फिर उसके बाद हम इधर आए तो दादी तो वहां होती थी, इसीलिए मेरे को वहां से छुट्टी मिलती थी। तो कभी 15 दिन, कभी मास भी रहते थे यहाँ सेवा करने के लिए। तो दीदी दादी के बहुत नजदीक आए। दादी को तो हम पहले से ही पहचानते थे क्योंकि दादी तो बॉम्बे में रहती थी, परंतु दीदी के संपर्क में आकर के हमने देखा दीदी को कितनी लगन है। दीदी सवेरे 3 बजे उठ के स्नान करती थी। क्यों स्नान करती थी? क्योंकि उसको 3:30 बजे योग में आना होता था, योग कराना होता। योग में झुटका नहीं आवे इसके लिए सवेरे, यहां इतनी ठंडी भी होगी तो दीदी स्नान करेगी। बाद में जाके तो भले करेगी, परंतु पहले स्नान करके पीछे आके एकदम 3:30 बजे आके बैठेगी योग कराने की। इतनी लगन थी दीदी को पढ़ाई की, योग की, और जो भी बाबा की आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं पर चलने की तात थी उसको। दीदी के अंदर बहुत प्रेम था और वो प्रेम ऐसा था जो सामने वाले की कमियों को निकाल देता। सिर्फ प्रेम नहीं करती थी परंतु कमियां भी निकालती। इसीलिए हम लोग हमेशा, ये जो दो जोड़ी थी ना दादी और दीदी की, तो हम लोग दादी को कहते थे ये माँ है और दीदी जो है वो बाप है। बाप आंख बताते हैं ना बच्चों को। तो कोई गलती होती थी तो हम लोग दीदी से डरते थे कि अरे दीदी छोड़ेगी नहीं, दीदी को मालूम पड़ेगा, प्रेम से समझाएगी, अगर तुम नहीं समझाएगी तुमको आंख भी बताएगी, परंतु वो तुम्हारी कमी जरूर निकाले। तो लव और ला का उसके पास बैलेंस था, गंभीरता और रमणीकता, उसके रमणीकता का उसके पास बैलेंस था। हंसेगी हंसाएगी और गंभीर भी इतनी गंभीर हो जाएगी जो एकदम उड़ा करके ऊपर ले जाए। इन सब बातों को प्रैक्टिकल में दीदी ने अपने जीवन में बाबा की आज्ञाओं को उतारा हुआ था। और कोई भी ईश्वरीय नियम जो है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। खुद तो नहीं करती थी पर दूसरे किसी की ताकत नहीं थी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करने की। ठीक एक एक का ध्यान देती थी, एक एक की तरफ अटेंशन रखती थी। और अभी हम इतना बड़ा बड़ा टीचर्स का झुंड जब भी देखती है तो मुझे दीदी बड़ी याद आती। क्योंकि दीदी क्या करती थी, जब भी टीचर्स की ही भट्टी होती थी, थोड़े होते थे, 50 हो गए, 100 तो बहुत कभी हुई, तो दीदी यहाँ चांदनी चौक में बैठती थी। ये बाहर है ना, ये चौक, इसको हम लोग चांदनी चौक कहते। हमारी सब दादियां इधर ही मिलेगी आपको। तो इधर दीदी शाम को तैयार होके बैठती थी। फिर क्या होता था उस समय, तो हम छोटे छोटे होते थे, तैयार होकर के सब निकलते थे अपने अपने कमरों से। दीदी बड़ी खुश होती थी देख देख, जैसा बाबा खुश होता था वैसा ही ये बहुत खुश होती थी। और गीत गाती थी बैठ के, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, उसका गीत चलता था। तो बड़ा प्यार करती थी, कहती थी देखो इतनी छोटी आयु में और इन बहनों ने क्या देखा जो इतना त्याग कर दिया। खुद ने भी बहुत बड़ा दीदी ने त्याग किया और दीदी को बंधन भी बहुत आए, परंतु उन सब बंधनों को काटा ऐसे जैसा मक्खन से बाहर हो गए। और ये जो पवित्रता के झगड़े चालू हुए ना, इसमें नंबर वन दीदी थी। पहला झगड़ा तो वहां से ही चालू हुआ, कराची में। उनका लौकिक पति जब फॉरेन से आया तो इनका पवित्रता का झगड़ा चालू हुआ, फिर औरों के झगड़े भी चालू हो। परंतु इन्होंने धरत पड़ी है, धर्म न छोड़िए, इस बात को पक्का किया हुआ था। और अभी जो मुन्नी बहन बैठ के सबको सौगात देती है, संभालती है, ये सारा दीदी की ड्यूटी थी। दीदी ने उसको सिखाया और दीदी ये सब संभालती थी और सबको हमेशा सौगातें देती थी, ध्यान रखती थी। मतलब पूरा पूरा इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाने के लिए दादी और दीदी ने अपना सारा समय दे दिया। बहुत मेहनत किया एक एक के ऊपर, एक एक को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रेरणाएं दी। हम तो हमेशा देखते थे कि कैसा ये अपना जीवन, नहीं तो बहुत बड़े घर की थी दीदी, परंतु इतना सिंपल लाइफ, खुद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं। पर इनकी जो इतनी सिंपल लाइफ थी, इतनी ऊंची लाइफ थी, इसको देख करके ऐसा लगता था कि इनको फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। शिव बाबा तो निराकार हैं, परंतु साकार में तो ब्रह्मा बाप और ये जो आदि रतन हैं बाबा के, जिनके कारण आज इतनी सेवाएं बढ़ी। भले आज वो साकार में नहीं है, परंतु अव्यक्त में होते हुए भी उनकी जो साकाश है वो इस वृक्ष को मिलती रहती है और ये आगे बढ़ता जाता है। वैसे भी आप देखेंगे, कोई भी ऊंचे से ऊंची जो भी बिल्डिंग होगी तो उसका फाउंडेशन भी इतना पक्का होता है। तो हमारा जो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतना वृक्ष बढ़ गया है, तो इसका फाउंडेशन बहुत पक्का है। ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया एक सेकंड में, इन आत्माओं ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने भी कुछ नहीं सोचा और सर्वस्व त्याग कर दिया। दीदी अकेली नहीं आई, उनकी लौकिक माता जी थी, लौकिक बहन थी। उनकी लौकिक माता जी को क्वीन मदर कहते थे, बड़े रिच घर की थी ना, उसको क्वीन मदर सभी कहते। वो बॉम्बे में रहती थी, वो अपनी बच्चियों को साथ में लेके आई। शीलिंद्रा दादी थी, वो बॉम्बे का सेंटर संभालती थी। उसको बाबा गवर्नर कहता था, वो ऐसा गवर्नर जैसी चलती थी, तो बाबा कहता था ये गवर्नर है हमारा, बॉम्बे का गवर्नर। उन्होंने भी बहुत सेवाएं किया। और उनके फिर कजिन थे, वो देरानी थी और उसकी बच्चियां थी, ब्रिज शांता दादी और हरदेवी दादी, वो पूना में रहते थे, उन्होंने वहां सेवाएं किया। तो मतलब आप देखेंगे, जहां भी हम समझते इतनी सेवाएं कैसे हुई, क्या किसने किया, तो इनकी त्याग और तपस्या के द्वारा ये सब सेवाएं हुई। हम लोग तो उसका फल खाने के लिए आ गए, बाकी इतना हुआ जरूर, तो बहुत मेहनत किया इन सभी ने। और आज हम देखते हैं कि आज बाबा का नाम चारों तरफ बाला हो रहा है। उनको यही इच्छा थी कि चारों तरफ बाबा का नाम बाला होवे और बाबा प्रत्यक्ष हो जावे। इस लगन में ही हमेशा रहते। और लास्ट भी दीदी ने घर जाना है, ऐसा थोड़े हम लोगों ने समझ, उस समय यह गीत बना कि आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है। तो हम लोगों ने थोड़े समझा इतना जल्दी घर चली जाएगी, तो गीत गाते गाते खुद ही घर चली गई। ऐसा हो गया, ड्रामा ऐसा वंडरफुल चलता है। बाकी ये हो गई हमारी मनमोहिनी दीदी, जो हम सभी के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। हम तो हमेशा उनके अंदर बहुत खूबियां थी, उसको देख करके हम आगे बढ़ते रहे और अभी भी याद करके बढ़ते रहते हैं। अभी हमें भी वापस घर जाना है, अभी उसकी तैयारी करनी, क्योंकि हर एक को यही है कि हमें घर जाना है, परंतु पास विथ ऑनर होकर के घर जाना है, ऐसा नहीं जाना है। उसके लिए हम अभी देखते हैं थोड़ा, कोई कोई हमारे भाई बहन आप उसमें भी एक दो से पूछते हैं, हमारे से भी पूछते रहते हैं, विनाश कभी हो? और कोई क्वेश्चन नहीं होता है, विनाश कभी होगा? अभी उनको सृष्टि के विनाश की बहुत फिक्र है, खुद के विनाश तो याद ही नहीं है कि हमारा भी कोई विनाश होने वाला, तो इसीलिए पूछे कि विनाश कभी होगा बहन? आपको मालूम, बाबा ने बताया आपको? हम कहते भाई हमारे को तो नहीं बताए, तो विनाश का जैसे कि इंतजार कर रहे हैं, परंतु विनाश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, उसका इंतजाम करने की आवश्यकता। हम उनको यही बताते हैं, हमारा तो अनुभव ये कहता है कि सृष्टि का विनाश कभी होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो जिस दिन बाबा के बने उसी दिन हमारे लिए सृष्टि खलास हो गई, हमारे लिए सृष्टि है ही नहीं, तो विनाश होवे या रहे हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी आयु में आई, आपसे ज्यादा बड़ी आयु वाले बड़ी बहने थी यज्ञ में, आपने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जो आप मम्मा बन गई, क्योंकि मम्मा की आयु तो छोटी थी। तो मम्मा ने एक ही जवाब दिया, मम्मा ने कहा मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं की, मेरे को सदैव यही याद रहता है कि मेरा ये जो श्वास है यही मेरा अंतिम श्वास है। आप बताओ, जिसको 24 घंटा ये याद रहे कि यही मेरा अंतिम श्वास है, जिसको मौत याद रहेगा उसकी बुद्धि कहां जा सकती? तो और कोई पुरुषार्थ नहीं किया? बोला मैंने कभी कोई पुरुषार्थ नहीं, परंतु जितना हमें ये याद रहता है उतना उतना हमारी बुद्धि उपराम होती जाती, यहां रहते भी उपराम, राम ऊपर रहता है ना, तो हमारी बुद्धि उसके साथ लगी रहती, देह और देह के संबंधों से डिटैच होते जाते हैं, आए अकेला जाना अकेला। तो जब अकेला ही जाना है हमको, तो वो अकेला बनने की प्रैक्टिस करनी है। ये देह भी हमारे साथ नहीं चलने वाली है, दो परीक्षाएं हमको अंत में देनी है, एक है अशरीरी बनना, दूसरा है नष्ट मुआ होना। तो हमको इस बात का बहुत अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का, देह में होते हुए देह से न्यारा रहने का अभ्यास करना है। जितना जितना हम देह से डिटैच होते जाएंगे, तो जो अंत के समय हमारे सामने सीन्स आएगी उसको हम डट के मुकाबला कर सके, क्योंकि आत्मा जो है वो अकाल मूरत, जब अकाल मूरत की स्थिति में हम स्थित होते हैं तो मौत का डर भी निकल जाता है, निर्भय बन जाते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी कटती नहीं है, वो अमर और अविनाशी। इसीलिए आप देखो साकार बाबा का अगर आप जीवन देखेंगे, शुरू शुरू में ही बाबा ने खुद के ऊपर कितनी मेहनत की आत्माभिमानी बनने की, कापियां की कापियां लिख दिया, ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, बाबा एकांत में बैठ के कापियां लिखता था, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, मैं एक कापी भर दिया, दूसरी कापी में लिखा जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, मतलब जितने घर के मेंबर है वो सब आत्माएं 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 कर, देखने वाले समय क्या उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता था। बाबा कभी कभी बोलता था मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, परंतु बैठ करके बाबा मेहनत करता, मम्मा ने मेहनत किया बैठ करके, सारी सारी रात ऊपर टेरेस पर जाकर के बैठ के मेहनत किया आत्माभिमानी बनने की। तो जितनी ये आत्म अभिमानी की स्थिति है, ये आत्माभिमानी की स्थिति देह और देह के संबंध को भुला देती। आप ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ देह और देह के संबंध याद रहते, वस्तु पदार्थ व्यक्ति वैभव, इन सभी से बुद्धि का योग हटा करके हमें नष्टो मोह बनना है, क्योंकि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अंत में और कोई भी याद नहीं आवे सिवाय बाबा के। किसी किसी को अपनी आइडिया से बहुत मोह होता है, अपने विचारों से बहुत मोह होता है, क्योंकि उनकी रचना होती है, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरी आइडिया बहुत अच्छी है, परंतु ये आपको आइडिया दी किसने? ये आपको विचार दिए किसने? पहले तो हम लोगों को ज्ञान का ग भी नहीं आता था, ये तो बाबा ने दिया ना। तो वो भूल जाता है और क्या होता है, खुद में फंस जाती, और कुछ नहीं आएगा तो इसमें बुद्धि चली जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये सब तरफ से बुद्धि को हटाओ, जो फर्टाइल हो गई है ना तुम्हारी बुद्धि, अभी समेटने की शक्ति को धारण करो। तो जितनी जितनी हमारे अंदर समेटने की शक्ति आती जाती है, चारों तरफ से हमारी बुद्धि हटती जाती है, उतनी उतनी बाबा से लगती जाती, नहीं तो अनेक तरफ हमारी बुद्धि अटकी पड़ी है। उसके लिए थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है। अटकेगे तो क्या होगा, मैं जा रही हूं, मेरा अगर पल्लू पीछे से अटक जाएगा मैं आगे जाएगी गिर जाएगी। उसी प्रकार अगर बुद्धि अटकी हुई होगी हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो किसी भी देहधारी से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से कहां भी हमारी बुद्धि अटकी नहीं हो, वे एकदम हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई। परंतु बुद्धि की लाइन क्लियर उसकी हो सकती है जिसका माइंड क्लियर क्लीन है। जब तक मनसा क्लीन नहीं है तब तक बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं हो सकती। तो मनसा को साफ रखने के लिए देखो, बाबा हमेशा कहता है चुंबक किसको खींचता है, जिसके ऊपर कट नहीं होती है उस सुई को खींचेगा, कट वाली सुई को नहीं खींचेगा। इसीलिए वो कट निकालने की आवश्यकता है। जितना जितना अपने मन को साफ करते जाएंगे, भक्ति मार्ग में हम गीत गाते थे, भगवान को शिक्षा देते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान हमको शिक्षा देता है, मैं तो किसी के अवगुण नहीं चित्त पर धरता हूं, मैं तो दया और क्षमा का सागर हूं, तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरो। तुम अपना चित्त क्यों मैला कर रहे हो और उनको देख के, देखते हुए नहीं देखो। जिन बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है वो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुन। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं जितना जितना, नहीं तो क्या होता है, हमारा वेस्ट समय जाता है। हमें वापस घर जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। जैसा देखो, आज अगर हमको अमेरिका जाना होगा, यहाँ की करेंसी नहीं काम में आएगी, मुझे करेंसी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वहां की देनी पड़ेगी, तभी काम में आएगी ना। तो उसी प्रकार हमारे पास जो है तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, ये हमारी प्रॉपर्टी, इसको मुझे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करके साथ में लेकर के जाना है। ये कैसा साथ में लेके जाए, ये जो भी मेरे पास है सत्ता, जो भी ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको पुण्य के काम में लगाने की आवश्यकता, इसको ईश्वरीय सेवाओं में लगाने की आवश्यकता है। जितना जितना हम इसको ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं उतना उतना हमारा पुण्य जमा होता है। पुण्य ये सबसे हल्का होता है जो हमारे साथ में चलता। आज भी बाबा बोल रहा था ना, इंश्योरेंस करते अपना, भक्ति मार्ग में भी अपना इंश्योरेंस करते, यहां भी इंश्योरेंस करते। किसके लिए? आगे के जन्म के लिए। यहां के लिए नहीं काम में आएगा, तुमको आगे के जन्म के लिए काम। तो सब कुछ ट्रांसफर जब हम अपना कर लेते हैं, ईश्वर अर्पण कर लेते हैं। आज कितनी अच्छी मुरली थी बाबा कि तुम भले प्रवृत्ति में रहते हो पर याद रखो तुम मेरा खा रहे हो, शिव भोलेनाथ के भंडारे का खा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो थोड़ा नशा रहता है अंदर, मैं कमाता हूं इनको खिलाता हूं। अगर वो देगा नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। देने वाला दाता वो है। इसीलिए प्रवृत्ति में रहो, देखो कंडीशन कितनी उसकी कड़ी है, प्रवृत्ति में रहो, कमाओ, परंतु शिव के भोले का खाओ, भंडारे का खाओ। अपना समझ के तुमने खाया, तुम्हारा मन साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा भोजन का देखो कितना महत्व है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तड़फते हैं। क्यों तड़फते हैं? क्योंकि ब्रह्मा भोजन खाके वो मनुष्य से देव बने, इसीलिए उनकी भी इच्छा रहती। तो बाबा हम बच्चों को ये जो युक्तियां बताता है किसके लिए बताता है? हमारे को हल्का करने के लिए। ये जो हम इतना बोझा लेके चल रहे हैं सारा, ये बोझा कहता है कर दो मेरे हवाले। हृदय विदीर्ण होता है, कैसा क्या करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हमारे को तो भूख मरना पड़ेगा। बाबा किसी का लेता नहीं, वो दाता है, उसको वो क्या करेगा? तुम्हारा लेके कहां लेके जाएगा? परम धाम में चलेगा क्या? कुछ भी उसको जरूरत नहीं। हम जब उसके हवाले कर देते हैं तो वो हमारे को ट्रांसफर करके क्या करता है? नई दुनिया में दे देता। अरे भिखारी लोग रस्ते में होते हैं, उनको भी अक्ल होती है कि ये मेरे को दे रहे पैसा, पर इनको रिटर्न कौन करेगा? इसीलिए देखो कार खड़ी रहेगी ना, चार भिखारी आ जाएंगे, अल्लाह के नाम पर दे दो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है हम तो रिटर्न नहीं कर सकेंगे, अल्लाह रिटर्न करेगा, इसीलिए बोलते हैं ईश्वर के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अल्लाह बेचारा फंस गया, वो कहता है मैं क्या करूं, मेरा नाम ले लेते हैं। अरे ये पत्थर है, ये भी भगवान का रूप है, मेरे को साक्षात्कार कराना पड़ता है उनको, जो है ही नहीं हनुमान पूछ वाला है ही नहीं, पर मेरे को साक्षात्कार कराना पड़ता है, ये भगवान है। अरे भगवान है तो करा साक्षात्कार, चल। इसीलिए बोलते मैं दिव्य दृष्टि की चाबी तुमको नहीं देता हूं, गुम कर देंगे तुम, मेरे काम में आते। तो बाबा हम बच्चों को हल्का बनाना चाहता। हम जब ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हम एकदम निरसंकल्प हो जाते, हल्के हो जाते, पाप कर्म करने से बच जाते। सबसे भारी दुनिया में है पाप कर्म, तो उससे बचाने के लिए बाबा पुण्य कर्म करने के लिए हम बच्चों को कहता है, बच्चे कर दो मेरे हवाले और चलते चलो, तुम आगे बढ़ते चलो। आप लोगों को बाबा की वो मुरली याद है क्या? नहीं, बाबा ने कहा था अगर तुम समर्पण भाव से चलते हैं, सरेंडर बुद्धि होकर के चलते हैं, भले तुम प्रवृत्ति में रहते हैं, पर मेरी गारंटी है मैं तुमको कभी भूख नहीं मरने दूंगा। तुमको तो नहीं भूख मरने दूंगा, पर तुम्हारे बच्चों को भी भूख नहीं मरने दूंगा। मैं बोला बताओ कोई दुनिया में ऐसा है बोलने वाला? कोई गारंटी उठाने वाला है? बाप इतनी बड़ी गारंटी उठाते तो भी बच्चे नहीं सुधरते तो क्या कहेगा वो? मैं बैठा हूं। तो बाबा ये चाहते हैं कि हम एकदम हल्के हो जावे। हल्के होगे तभी तो ऊपर उड़ेगे, नहीं तो नीचे आना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया का आकर्षण होगा तो वो हमारे को ऊपर उड़ने नहीं देगा। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है और शरीरी बनो क्यों कहता है? शरीर किसका बना हुआ है? पांच तत्वों का बना है ना, पांच तत्वों का पुतला है ना। धरणी में कौन सा आकर्षण है? कोई भी चीज ऊपर फेंको तो कहां जाती है? नीचे आती है। तो अगर इसका भान होगा, अभिमान होगा, तो ऊपर जाएगा, ये नीचे खींचेगा नहीं खींचेगा? इसीलिए अशरीरी बनने के लिए कहते हैं, अशरीरी हो जाओ, अपने मनसा को एकदम साफ कर डालो, अपनी बुद्धि को एकदम क्लियर कर डालो, तो बाबा की सब प्रेरणाएं तुम कैच कर सकें। जब अंत का समय आएगा, बाबा कहते थे अंत का समय आएगा तुम्हारे को पहले से मैं प्रेरणा दूंगा, इधर से खिसक जाओ। पर कैच करने वाला चाहिए ना, मेरी बुद्धि का ही ठिकाना नहीं होगा तो हमारे को कहां से वो कैचिंग पावर आएगी उस समय?
हमारी बुद्धि साफ ही नहीं होगी तो हम कैच ही नहीं कर सकेंगे ना, कितना भी अच्छा गीत बजता होगा परंतु तुम्हारा अगर लाइन क्लियर नहीं है तुम्हारे टीवी की या रेडियो की तो आवाज आएगा कहां से, दृश्य दिखेगा कैसे। बाबा हमेशा बच्चों का रक्षक, वो हमको ऐसा नहीं मरने देगा, परंतु अगर हम उसकी याद में रहेंगे, हम उसके आज्ञाओं पर चलेंगे, अपने दिल को सच्चाई और सफाई से चलाएंगे, तो बाबा कहता है इस समय तुम्हें क्या है, तुम्हें बाप के दिल तख्त पर बैठना है, तभी ताऊजी तख्त मिलेगा ना। वैसे भी आप देखो सुई में धागा कौन सा पड़ता है, अगर एक छोटी सी भी गांठ होगी तो धागा जाता है सुई के अंदर। वैसा ही अगर हमारे मन में कोई भी खोट होगी हम भगवान के दिल में नहीं जा सकते। अगर उसके दिल में मुझे स्थान चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सत्यता, सच्चाई और सफाई चाहिए। जब आत्मा साफ हो जाती है, दिल साफ तो मुराद हासिल, हम उसके दिल तख्त पर बैठ सकते। तो हमें सदैव ये पुरुषार्थ करना है कि हमको एकदम हल्का हो जाने का है, उसको सब कुछ सौंप करके और अपने को डबल लाइट बना करके वापस जाना है। डबल लाइट का भी यहां से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं आत्मा भी लाइट हूं, ये देह भी मेरी लाइट। आत्म अभिमानी बनने में ज्यादा मेहनत लगेगी आपको कर्म करते समय, पर डबल लाइट बनने में इतनी नहीं लगेगी। कर्म करते हुए डबल लाइट होके आप चल सकते, लाइट का शरीर धारण करके कर्म कर सकते। इसीलिए थोड़ा अटेंशन देने की आवश्यकता है। और बाबा जो हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान देता है उसका सिमरण करने की आवश्यकता, जितना जितना हम उसका सिमरण करते हैं उतना उतना बाबा के जो ज्ञान, जो सिर्फ वो ज्ञान नहीं है वो शस्त्र है, ज्ञान ये औषधि है, ज्ञान ये अंजन है, वो जैसा हमको चाहिए वैसा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते, नहीं। बाबा ने जो बोला है उसको मुझे प्रैक्टिकल में लाना है। जब इतना हम पक्का अपने से दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा पढ़ाई के ऊपर पूरा अटेंशन रहता है, याद के ऊपर अटेंशन रहता है, बाबा की आज्ञाओं की तरफ हम ध्यान देके बाबा का आज्ञाकारी बन के चलते। अपना एक स्लोगन है, अगर तुम भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम उसका ध्यान ही नहीं करोगे वो काय को तुम्हारा ध्यान रखेगा। वो क्या बांधा हुआ, इतना कच्चा नहीं है, ध्यान में रखना आप। उसका नाम ऐसा ही भोलानाथ रख दिया, ऐसा भोला भोला नहीं है, उसके हाथ में तो तराजू है पकड़ा हुआ है उसने, जो जितना करता है उतना ही देता है, बोलता है बैठा रहे तू आराम कर जा। पक्का सौदागर है, पक्का सौदागर। इसीलिए वापस घर जाना है तो प्लेन हो जाओ, बुरा मत देखो। बुरा देखना माना क्या देखना, बुरा देखना माना औरों की बुराइयां देखना। बुरा मत सोचो, परिचिंतन मत करो। साफ करना है ना अपने को, तो परहेज तो कुछ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बुरा ही देखते रहेंगे। तो आप देखो, खुद ही देखो, अगर हम किसी का अवगुण देखते हैं तो क्या होता है उस व्यक्ति के लिए, क्या होता है, प्रेम आता है, नफरत आती है। नफरत से मन साफ होता है, नफरत क्या है, अवगुण है ना, नफरत पाप है ना, नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ ना, सामने वाले का हुआ, खुद का ही हुआ। जैसा देखो कोई व्यक्ति भूल करता है, कोई कोई कहते हैं देखो बहन जी ऐसा है हम गुस्सा नहीं करते, हमको गुस्सा नहीं, हमने वैसा गुस्सा छोड़ दिया है, परंतु कोई झूठ बोलता है ना तो हमको गुस्सा आ जाता है, कोई भूल करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करना भूल है या नहीं, अच्छा सामने वाले ने भूल किया मैंने गुस्सा किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैंने गुस्सा किया तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, मेरी स्थिति बिगड़ गई। अभी भूल उसने किया, सजा किसने भोगी? कितना ज्ञान है देखो हमारे, भूल वो कर रहा है और सजा मैं भोग रही हूं, इसको समझदारी कहेंगे? ये समझदारी तो नहीं है। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो आप, फिर अपने ऊपर बरोबर अटेंशन रहे। कि मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है, कौन क्या करता है ये मेरे को नहीं देख। जब खुद के ऊपर टेंशन होता है ना, तो हम अपने को परिवर्तन कर सकते। दीदी की यही विशेषता थी, उसका खुद के ऊपर बहुत अटेंशन था, इसीलिए औरों के आगे एक उदाहरण बन गई। उदाहरण ऐसा नहीं बन सकते, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करें, ये स्लोगन हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं जैसा और कर्म करेंगे उसको देख के हम करें, फिर तो जग ही नहीं बदलेगा ऐसा होगा तो। आज भी बाबा बोल रहे वो बदले तो मैं बदलूं, ये सौदा नहीं चलता है, वो बदलने वाला नहीं है, तेरे को बदलना है तो बदल, नहीं बदलना है तो जा यहां से। और क्या करेंगे। इसलिए सदैव याद रखो हमें वापस जाना है, वापस जाने की मेरे को तैयारी करनी, प्लेन आत्मा बनना है, पवित्र आत्मा बनना है, पावन आत्मा बनना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते जाएगा, फिर समेटने की ताकत आ जाएगी। मुझे किसी को भी नहीं देखना है, देखना है तो एक बाबा को देखना, उसको सामने रखो, सी फादर फॉलो फादर, बस और कुछ नहीं। बहुत शॉर्टकट है पुरुषार्थ का, बहुत शॉर्टकट बाबा ने बताया हुआ है, पर हम गलियों में घूमते हैं, ऐसा कर हाईवे छोड़ देते हैं, गलियों में चले जाते हैं, फिर धक्के खाते हैं, फिर तकलीफ होती है, फिर बोलना पड़ता है, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी है पुरुषार्थ, बहुत ईजी है, सिंपल। जो सिंपल पुरुषार्थ करता है वही सैंपल बन सकता है, सिंपल पुरुषार्थ नहीं करेगा मुंझा हुआ होगा वो सैंपल कैसा बनेगा औरों के। इसीलिए सदैव याद रखो हमें घर वापस जाना है, उसकी हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें पावन बनना है। वो जावे या नहीं जावे हमारा क्या जाने वाला है, ये चले तो मैं चलूं ऐसा थोड़े ही, वो उसको जाना हुए तो जावे, नहीं जाना हुए तो नहीं जावे ना। बोला मैं कोई ठेका थोड़े उसका उठाया, मैंने तो मेरा ठेका उठाया हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं, उनको अगर हम अटेंशन देते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। ओम शांति।
चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा,
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद Thank you. हमें तो